learners, welcome to our secondary level mathematics program and discuss about the chapter 2 of your SLM 1, that is textbook 1, that is exponents and radicals. In your first chapter, you already know the system or number system and the different applications of different operations comes under number system. And today we will discuss one of the extent part of the number system, that is exponent and radicals. Perhaps you know the concept of multiplication and difficulty to multiply different number. Hope exponent and the radical concept will be solve some of the difficulty problems raised during the multiplication. And today we will discuss this part, exponent and radicals, it's important and its application in day-to-day life. At first, let's discuss about the concept of exponent.
Suppose we have to multiply same number many times. Suppose we multiply number 7 to itself. Number 7 to itself means 7 into 7. One more time if I multiply 7 into 7 into 7. So we can write it. लेकिन अगर मुझे इसी नंबर को 15 बार मल्टीप्लाई करना है, सपोज 7 को मैं 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो लिखना होगा मुझे 7 इंटू 7 इंटू 7, लिखते लिखते 15 टाइम्स. इट इज़ वेरी टायरिंग एंड टैक्सिंग ऑल्सो. तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम एक नया तरीका निकालते हैं. और हम क्या करते हैं कि 7 के ऊपर राइट साइड में छोटा, 7 के साइज से थोड़ा छोटा 15 लिख देते हैं. और ये हमारा मानना हुआ कि ये जो हमने सिंबल बनाया है 7, उसके ऊपर राइट साइड में ऊपर 15, मतलब 7 को 7 के साथ ही 15 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया. तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं. ये हमारा एक सिंबल है, नोटेशन हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारा नोटेशन कहलाता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन.
दैट इज 7 टू रेस टू पावर, उसको इसे बोलते हैं 7 रेस टू पावर 15. उसका मतलब जैसे बता रहे 7 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एंड दिस इज द नोटेशंस ऑफ द एक्सपोनेंट्स. एंड हियर द 7 टू पावर 15, जहाँ पर हम लिखते हैं कि राइट हैंड साइड का ऊपर जो बोले कि 15 रखना है, 7 को हम बेस बोलते हैं,
बिल्कुल,
एंड 15 को उसका एक्सपोनेंट और पावर बोलते हैं.
पावर बोलते हैं. जैसे पढ़ा होगा 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 7. 7 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7. तो बेस हमारा है 7 और पावर है हमारा 3, और इसको हम कहते हैं 7 raised to the power 3.
13 और 15, 7 to power 13 अगर बताएंगे, तो 7 is multiply by 13, 13 times.
13 times.
तो उसका ये हेल्प करता है कि बार बार लिखने के जगह में हम एक सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आप जैसे बताया कि एक इंटीजर का सिंबल है, जैसे रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा. सपोज 2 upon 5 to the power 5, तो वो कंसेप्ट में और इजी बना देगा कि 2 by 5 मल्टीप्लाई विथ 5 टाइम्स.
तो 2 by 5 को ही अगर हमें अपने 2 by 5 से ही 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, 2 by 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 by 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 by 5. 5 टाइम्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, 2 by 5 ब्रैकेट में और उसके ऊपर राइट साइड में हम लिख देंगे 5.
एग्जैक्टली. अगर उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा तो 2 to the power 5, अगर अगर वैल्यू निकालना पड़ेगा तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि 2 by 5 जो है, 2 इज द आपका जो ऊपर का जो पार्ट, अपर पार्ट
होता है न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर का 2 to the power 5 बाय
डिनोमिनेटर 2 to the power 5,
तो उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. स्प्लिट करके उनका अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये जो पार्ट है एक्सपोनेंट का, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन के यूज करने में।
केवल रैशनल नंबर ही नहीं, अगर हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमने -7 लिया है और -7 को मान लीजिए हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो -7 × -7 × -7 ऐसे 6 टाइम्स लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, -7 ब्रैकेट में और उसके ऊपर राइट साइड में 6। अब अगर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है तो ये जो माइनस है वो भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो -6 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और 7 के ऊपर पावर 6, यानी कि 7 हमारा 6 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये मतलब जो आप बताए कि रेस टू पावर, पावर का मीनिंग सेम एज द एक्सपोनेंट्स।
हाँ हाँ,
कहाँ पर हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं, कहाँ पर हम पावर यूज करते हैं, लेकिन उनका मीनिंग
मतलब
एक ही होता है। तो मतलब यही है कि इतने टाइम मल्टीप्लाई है।
हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो बार बार मल्टीप्लिकेशन लिखने के बजाय एक हमारा कन्वीनियंट तरीका है शॉर्ट में लिखने के लिए।
एग्जैक्टली। और एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर।
हाँ, अब यहाँ पर हमारे मान लीजिए हम 3 के ऊपर पावर 2, ये हमने सीखा पावर 3, 4 ये सब। अब 3 के ऊपर अगर पावर 1 है तो, या जैसे हम कहें 3 raised to the power 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को एक ही बार मल्टीप्लाई किया गया, मतलब केवल 3,
और उसका जरूरत नहीं है,
उसका जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम 3 के ऊपर पावर 1 कभी लिखते ही नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारा 3 के ऊपर -1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक जानने वाली चीज है हमारी। तो इसके पहले हम देखते ये हैं कि रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है। 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/3। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 5 raised to the power -1। 5 raised to the power -1 का मतलब हो गया 1/5, जो 5 का रेसिप्रोकल है।
एग्जैक्टली। अगर 3/4 raised to power 2, उनका रेसिप्रोकल क्या होगा,
3/4 raised to the power 2। अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालना चाहते हैं तो हम इसकी लिखेंगे 3/4 raised to the power -2, वो हमारा रेसिप्रोकल होगा।
एग्जैक्टली। अगर ऐसे भी कर सकते हैं 3/4 raised to power 2 = 1/3/4 raised to power -1।
हाँ,
तो माइनस टू एग्जैक्टली वो हो जाएगा, जस्ट रिवर्स,
4/3 raised to the power 2। बिल्कुल।
तो अगर सॉल्व करना है 4/2 / 3/2, अपने अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। ये रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरत है क्योंकि हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनदर एक कॉन्सेप्ट जो एक्सपोनेंट एंड रेडिकल के साथ जुड़ा है, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन।
प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तो हम ये जाने कि प्राइम नंबर्स क्या हैं। सभी आप लोगों को पता है 2, 3, 5, ये सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए एक नंबर हम ले लेते हैं 72। अब 72 क्या है, इसके हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो जिसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब अगर हम इनके फैक्टर्स निकाल लें जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हों, जैसे इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 8 × 9 = 72। अब 8 के फिर से हम फैक्टर करें 2 × 2 × 2, और 9 के फैक्टर्स होंगे 3 × 3। तो अब अगर हम 72 को ऐसा लिखें, 72 = 2 × 2 × 2, ये हो गया 8 × 3 × 3, ये हो गया 9। तो ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब ये प्राइम फैक्टर्स में देखिए, हमको 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ा, 3 हमको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ा, तो इसको फिर से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे और हम 72 = 2 to the power 3, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 2। तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है, और इसको हम कहते हैं कि 72 को हमने प्राइम फैक्टर्स में लिखकर एक्सपोनेंशियल रोटेशन
मतलब
में
उनका जो बेस रहेगा, बेस वैल्यू, हियर बेस इज 2 and 3,
बेस हमारे प्राइम नंबर
है, देन वी कैन से दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन।
बिल्कुल।
और एक हो सकता है कि स्टूडेंट अभी बोल सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर वो पहले पढ़ चुका है, फिर दोबारा हम उसको बताना चाहता हूँ कि प्राइम फैक्टर ए नंबर है जिसका फैक्टर वन एंड सेम नंबर,
बिल्कुल,
देन वी कैन से दिस इज द प्राइम नंबर। जैसे दो है, दो का जो फैक्टर है वन है टू है, थ्री लेंगे तो उनका जो फैक्टर है वन है थ्री है,
हाँ.
अगर फाइव लेंगे वन है फाइव है, अगर आठ लेंगे एट अगर नंबर लेंगे उनका जो फैक्टर आएगा वन टू आएगा फोर आएगा एट आएगा,
हाँ.
मतलब वन एंड एट के बाद दो अदर नंबर
और भी हैं, हाँ,
दैट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर।
हाँ.
तो वो प्राइम नंबर है नहीं है,
नहीं है।
प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं कि जो हमारा बेस आएगा, बेस अगर प्राइम नंबर फॉर्म में आएगा देन वी कैन से दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन।
हाँ, यहाँ एक बात हम और ऐड कर देना चाहते हैं, बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वन क्या है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो वन हमारा ना प्राइम है और ना कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम की हमारी डेफिनेशन होती है कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए, वन एंड नंबर इटसेल्फ। अब वन में हमारा केवल एक ही फैक्टर आता है वन, तो ये ना प्राइम नंबर है और ना कंपोजिट
नंबर है।
इस हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू होता है।
एग्जैक्टली और वन को ये मान के चलते हैं कि एक स्पेशल नंबर है, उनको हम कहाँ से काउंट नहीं करते, नाइदर इन कंपोजिट नंबर नॉर इन ये प्राइम नंबर। अभी फिलहाल हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि एक्सपोनेंट द नंबर ऑफ टाइम्स को मल्टीप्लाई करने जगह में शॉर्टली कैसे हम लिख सकते हूँ, शॉर्टली कैसे यूज कर सकते हूँ, रियली हम अभी तक यूज किए नहीं। यूज करने के लिए उनको बहुत सारे लॉज रूल्स फॉलो करना पड़ता है। फिलहाल अभी जो हम डिस्कशन करना चाहते होंगे डिफरेंट लॉज दैट इन्वॉल्व फॉर द एक्सपोनेंट्स। वन ऑफ द फर्स्ट रूल, जो रूल वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रूल को आप वेराइट प्लेस में यूज करना है। दैट रूल इज ए टू पावर एम मल्टीप्लाई और इंटू बोलते हैं ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एन।
बिल्कुल, ये जो पहला रूल आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम लिखते हैं फाइव रेस टू द पावर टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेस टू द पावर फोर। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखें तो फाइव रेस टू द पावर टू लिखा जाएगा फाइव इंटू फाइव, और फाइव रेस टू द पावर फोर लिखा जाएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव फोर टाइम्स, क्योंकि रेस टू द पावर फोर हमने किया। अब आप इसको गिनिए हाउ मेनी टाइम्स वी हैव मल्टीप्लाइड फाइव। देखिए, दो पहले दो बार फाइव लिखा, फिर बाद में चार बार फाइव लिखा, तो ये हो गया फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव, कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, सिक्स टाइम्स। दैट मीन्स इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इट विल बी फाइव रेस टू द पावर सिक्स। अब देखिए, हमने पहले क्या लिखा था, फाइव रेस टू द पावर टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेस टू द पावर फोर, और हमने अब क्या लिखा, फाइव रेस टू द पावर सिक्स। फोर प्लस टू क्या होता है, सिक्स। तो जो आपने अभी लॉ वन बताया वो यहाँ हमारा वेरीफाई हो रहा है कि टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स।
एग्जैक्टली, और जो बात है कि जहां पे बोले कि ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बेस दोनों का सेम होना जरूरी है।
जरूरी है,
अगर बेस डिफरेंट है तो ये रूल यूज नहीं कर
पाएंगे। बिल्कुल।
तो जहां पर आप जो बताए कि फाइव टू पावर टू इंटू फाइव टू पावर फोर, तो फाइव द बेस दोनों पे सेम है, एंड जहां पर हम रूल यूज कर रहे हैं तो फाइव टू पावर टू प्लस फोर दैट इज फाइव टू पावर सिक्स, देन वी विल फाइंड दैट वैल्यू। तो बात यही है कि इतना बड़ा जो मल्टीप्लीकेशन को हम कितने इजी से हम उसको बना दिए। एंड लेट कम द सेकेंड रूल।
यहाँ एक चीज और है, ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के ऊपर कोई पावर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये हमारी एक कंडीशन है कि हमारे एम और एन ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और ए हमारा जीरो नहीं है,
नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल वन है, एंड डिविजन के लिए रूल टू बोलते आर टू बोलते, जहां को बेस है ए टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू पावर एन इक्वल टू ए माइन ए टू पावर एम माइनस एन, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, फर्क यही है पहले मल्टीप्लीकेशन था, सेकेंड केस में डिविजन है, जहाँ डिविजन है वहाँ सब्सट्रैक्ट करना है,
नेगेटिव पावर हो जाती है डिनोमिनेटर में, जैसा हमने पहले रेसिप्रोकल में भी देखा था।
तो एग्जैक्टली
हाँ, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 7 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 7 raised to the power 3, अगर आप इसको लिखिए तो न्यूमरेटर में आपके पास 7 raised to the power 5 मतलब 7 यू विल मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 raised to the power 3 मतलब 7 विल बी मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका कॉमन क्या है, 7, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बचेगा न्यूमरेटर में, केवल 7 × 7 2, यानी कि 7 raised to the power 2 बचा, और 5 − 3 क्या होगा,
2 होगा, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं,
हमारा फॉर्मूला।
तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिए तो वेरी सिंपल एग्जांपल, जहाँ पे बताया कि 7 to power कहाँ पर, सपोज 992 to power 3 वो केस में बहुत आसानी से हो जाएगा, कि जहाँ पर डिवीजन है वहाँ पे ओनली हम रूल को यूज कर लेंगे कि माइनस कराना है, जहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो वहाँ हम ऐड कर सकते हैं दोनों का नंबर को। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिवीजन, बट फर्क यही है कि सपोज ए टू पावर एम बाई ए टू पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन एम, वो केस में हम 1/a^m-n करना है।
हाँ, अगर हमारा n बड़ा है मतलब हमारा डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है, तो ऊपर के सारे नंबर्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ही हमारा नीचे केवल ही बचेगा, तो वो हमारा जाएगा 1/a^n, बड़ा है अभी तो n − m।
एग्जैक्टली, बट दोनों केस रिलेटेड टू डिवीजन है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्ड द रिवर्स पार्ट इज द सबस्ट्रक्शन, दोनों भी ही सब्स्ट्रक्शन का यूज हो रहा है, एंड द रूल फोर इज दैट इज ए टू पावर एम टू द पावर एन, दैट मीन्स दोबारा पावर यहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे और आसान बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, ए टू पावर एम टू द पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम एन
एम इन टू एन एम एन,
बिकॉज सपोज एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे,
इसमें भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही 7 वाला ही ले लेते हैं, जैसे आपने बताया पावर और उसके ऊपर फिर से पावर, तो हम ले लेते हैं 7 raised to the power 3 और इसके ऊपर फिर से पावर लगा देते हैं 2, यानी 7 raised to the power 3 और इस पूरे के ऊपर raised to the power 2, इसका मतलब क्या हो गया, 7 raised to the power 3 इज मल्टीप्लाइड टू इट सेल्फ बाई 7 raised to the power 3, यानी 7 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 raised to the power 3। अब रूल 1 में हमने क्या सीखा है, अगर सेम बेस है तो हमारे पावर्स ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे भी हमारा सेम बेस है 7, 7 raised to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 raised to the power 3, बेस हमारा सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 3 + 3, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर हमारा आया 7 raised to the power 6। अब पावर पहले वाली थी 3 और उसके बाद हमने लगाई 2, मतलब n हमारा था 2, 3 × 2 क्या होता है 6, सो अगेन वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला कि a^m whole raised to the power n इज इक्वल टू a^m n,
दैट इज द जो अभी 4 रूल है, रूल तो यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, याद करना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कौन सा जगह में हम यूज करने के, यहाँ पे एक सिंपल बात है कि आप यूज करेंगे वहाँ पर जहाँ पर बेस आइदर सेम होना चाहिए, आइदर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में बेस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट ये तो एक रूल नहीं है बट नोटेशन, दैट इज a^0 = 1, a^0 मीन्स एनी नंबर टू द पावर 0 उनका वैल्यू क्या होगा, उनका वैल्यू ऑलवेज इन 1, सपोज 205 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर ले लिए 500 नंबर टू द पावर 0 इक्वल टू 1, बात है उसको हम 0 एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो कंसेप्ट इज 0 एक्सपोनेंट, हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं हाउ इट इज 1, बिकॉज उनका जो प्रूफ बहुत बहुत बड़ा बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही आता है, कैसे जस्टिफाई करो कोई नंबर का टू द पावर 0 इक्वल टू वन. फॉर एग्जाम्पल हम अभी हम सभी को पता है 2 by 2 = 1, 3 by 3 = 1, 4 by 4 = 1. सपोज एक नंबर लिए दैट इज एक्स, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू वन, एक्स अगर हम आप जो पहले नोटेशन बताए थे कुछ नहीं होगा तो वैल्यू वन होगा, पावर वन होता है. एक्स टू द पावर वन बाई एक्स टू पावर वन इक्वल टू वन. तो जो एक्स टू पावर वन डिवाइडेड बाई एक्स टू पावर वन, यहाँ का बेस दोनों में सेम है. और दोनों में जो पावर वन वन है तो हम लिख सकते हैं ये एक्स टू पावर वन माइनस वन इक्वल टू वन.
डिवीजन वाला फॉर्मूला यूज करके
एक्स टू पावर वन माइनस वन इक्वल टू वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स टू पावर जीरो इक्वल टू वन. दिस इज द लॉजिकल प्रूफ है. आप उसको प्रूफ कैसे हुआ तो अलग बात है, लेकिन द रूल है कि आप कोई नंबर को टू द पावर जीरो मीन्स जीरो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वैल्यू हुआ नहीं आएगा.
जीरो टाइम मल्टीप्लीकेशन के कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से एनी नंबर रेज टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन.
ये आपको ध्यान से ये जो पांच चार रूल है, पांच नंबर वाला एक नोटेशन. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट. अगेन आई एम रिपीटिंग, नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट स्टैंड्स फॉर पावर. कोई नंबर का आइदर इंटीजर हो सकता है कि रेशनल नंबर हो सकता है, उनका जो पावर और आपको एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव होगा तो क्या वैल्यू होगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉरी एग्जाम्पल 3 by 8 रेशनल नंबर टू द पावर माइनस टू.
हाँ, 3 by 8 रेस टू द पावर माइनस टू. अभी हमने थोड़ी पहले हम लोगों ने बात किया था 3 raised to the power -1, इसका मतलब क्या था, रेसिप्रोकल हम लिखते थे 1/3. 3 raised to the power -1 is 1/3. अब मान लीजिए मुझे लिखना है 3 by 8 raised to the power -2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा 1/3 raised to the power 2. इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8/3 raised to the power 2.
क्योंकि नेगेटिव, जहां पर नेगेटिव है वहां पर प्रॉब्लम है. कोई भी नंबर, कोई भी मैथमेटिक्स में, कोई भी केस पे आप कोशिश करिए कि नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव लाना है. जैसे पहले नंबर था 3 by 8 to power -2, वहाँ डिफिकल्ट लगा था कि कैसे वैल्यू निकालना है. तो अगर पॉजिटिव को कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि 8 1/3 by 8 to power 2 हो जाएगा, दैट इज रिवर्स होगा तो 8/3 to the power 2 हो जाएगा. अभी फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 to power 2 by 3 to power 2 कर सकते हैं, दैट इज 64/9.
बस उसको रेसिप्रोकल किया, बस
कर सकते हैं. तो बात यही है, अगर कहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है वहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पॉजिटिव में लेके सॉल्व करें.
तब हमारा आसान हो जाएगा.
तो ये तो पहले रेशनल नंबर था. फॉर एग्जाम्पल एनादर इंटीजर का वैल्यू लेंगे 2 to power -3. सपोज
2 to the power -3, तो ये इसको रिवर्स कर लेंगे हम लोग, ये हमारा नीचे आ जाएगा 1/2 to the power 3.
1/2 to power 3, दैट इज 1/8.
1/8
अगर फ्रैक्शन में निकालना तो निकाल सकते हैं. बात है कि नेगेटिव को कैसे हम कन्वर्ट किए पॉजिटिव में. और एक सेकेंड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम एक्सपोनेंट में यूज करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ a to power p/q.
a raised to the power p/q. तो इसको
क्योंकि पहले जो हम जितने भी डिस्कशन किए, पहले रेशनल नंबर का ऊपर कोई इंटीजर था, यहाँ पे जस्ट रिवर्स कि इंटीजर का ऊपर एक रेशनल नंबर,
रेशनल पावर हमने लगाई. अभी तक हम जितनी पावर ले रहे थे वो सारा हमारा इंटीजर था, अब हम क्या कर रहे हैं, हम रैशनल नंबर को पावर ले रहे हैं. तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि ए रेस टू द पावर 1/q का क्या मतलब है. जैसे आपने बोला ए रेस टू द पावर p/q, तो पहले हम देखते हैं कि ए रेस टू द पावर 1/q का क्या मतलब है. ए रेस टू द पावर 1/q को अगर मैं इसी से q टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ए रेस टू द पावर 1/q q टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो जो अभी हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन सीखा है उसके अकॉर्डिंग a रेस टू द पावर 1 अपॉन q रेस टू द पावर q. अब हमने एक और रूल सीखा था, पावर पर पावर जब हम लगा रहे थे तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, तो a रेस टू द पावर 1 अपॉन q मल्टीप्लाइड बाय q, q और q कैंसिल होके a रेस टू द पावर 1. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसका मतलब क्या हुआ कि a रेस टू द पावर 1 अपॉन q इज द qth रूट ऑफ a. a रेस टू द पावर 1 अपॉन q पे अगर मैं p पावर लगाती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 a रेस टू द पावर 1 अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई p. मतलब हाँ, a रेस टू द पावर 1 अपॉन q इज रेस्ड टू द पावर p. मतलब qth रूट ऑफ a हैज बीन मल्टीप्लाइड p.
एग्जैक्टली. अब वो तो नोटेशन है, कंसेप्ट है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है हाउ विल वी यूज इट रियल पार्ट में, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 625, 625 टू द पावर 1/4 एक कंसेप्ट है. उनका वैल्यू क्या होगा, 625 टू द पावर 1/4 उनका वैल्यू क्या होगा. ऐसे अगर ऐसे सवाल है उसको एक्सपोनेंट का जो यूज करके, एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते.
हाँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो जो 625 है इसको पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. हम देखते हैं कि 5 × 5 × 5 × 5 ये हमारा 625 हुआ. ठीक है, अब 5 × 5 × 5 × 5 ये हुआ 625 और इस पे हमारी पावर है 1/4. तो अंदर में हमारा क्या आ गया, 5 रेस टू द पावर 4 और उसके बाद हमारे ऊपर पावर क्या है, 1/4. मतलब 5 रेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 और 4 कैंसिल, वी गेट द आंसर एज 5.
दैट मीन्स अगर ऐसे देखेंगे तो 625 टू पावर 1/4 क्या होगा. लगता है कि बहुत बड़ा नंबर आएगा. अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यूज करेंगे एक्सपोनेंट का, वहां पे सिंपल वैल्यू 5 आ गया. तो मतलब यही है, एक्सपोनेंट का जो लॉज है, रूल है, कंसेप्ट है, वहाँ हमको बहुत आसानी कर देगा कि कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत बहुत से बहुत इजीली सॉल्व कर
इजी बना simple, देगा सिंपल वे में हो जाता है.
और फिलहाल दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्सपोनेंट. सो नाउ विल बी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट्स, व्हाट एग्जैक्टली शॉर्ट इज.
जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि a रेस टू द पावर 1 अपॉन q, तो a रेस टू द पावर 1 अपॉन q को हमने क्या बताया, दिस इज qth रूट ऑफ a. तो जैसा आपको मालूम है इसको एक हम सिंबल के द्वारा दिखाते हैं जिसको हम रेडिकल साइन कहते हैं. अब ये जो हमारा रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन में से कुछ रेडिकल्स हमारे सर्ड्स होते हैं. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि सर्ड क्या है और रेडिकल क्या है. जैसे मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट 4 कहती हूँ, तो स्क्वायर रूट 4 क्या हुआ, 4 मतलब 2 × 2, 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 अंदर में हमने 4 लिखा, 2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई. हमको आंसर में एक रैशनल नंबर मिल गया. तो ये जो रेडिकल साइन के अंदर हमने 4 लिखा और स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन लगाया तो हमें रैशनल नंबर मिल गया. लेकिन मान लीजिए मैं लिखूं स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 7, तो इसके आंसर में मुझे क्या कोई रैशनल नंबर मिल सकता है, बिल्कुल नहीं. ये हमारा इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पे जो हमने रेडिकल साइन यूज किया है जिसमें हमें रैशनल नंबर आंसर में नहीं मिल सकता, ऐसे रेडिकल साइंस हमारे सर्ड कहलाते हैं. मतलब ऐसा रेडिकल साइन सर्ड कहलाता है जिसके आंसर में हमें रैशनल नंबर नहीं मिल सकता है.
एग्जैक्टली. तो ये दो कंडीशन है. एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इट इज ए इरेशनल नंबर, जो आउटकम्स आएगा
एक इरेशनल नंबर होना चाहिए.
एंड सेकेंड कंडीशन भी है, सेकेंड कंडीशन है इट इज ए रूट ऑफ दी पॉजिटिव रेशनल नंबर।
हाँ,
अगर वहाँ पे नेगेटिव होगा फिर ये नहीं।
अगर ये हमारा स्क्वायर रूट माइनस टू है तो अंदर में हमारा जो माइनस टू है वो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा सर्ड नहीं होगा। मतलब सर्ड के लिए हमारे कंडीशंस क्या हैं? पहला कंडीशन तो ये है कि हमारा आंसर, हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा इरेशनल नंबर होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा रेडिकल का साइन है, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, जो रेडिकल का साइन है वो हमारा अंदर में, जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं, वो हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए,
होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको सॉर्ट नहीं बोल पाएंगे।
हाँ,
फॉर एग्जाम्पल वन जिस मैं बोलता हूँ, रूट सेवन को हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ सेवन इज ए सर, यस इट इज ए सर। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ एट।
अब हमें पहले एट के अंदर फैक्टर्स देखने होंगे। एट के फैक्टर्स हो गए 2 × 2 × 2, मतलब 2 raised to the power 3। 2 raised to the power 3 का जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर 2 आ गया, जो एक रैशनल नंबर है। तो क्यूब रूट ऑफ 8 एक रैशनल नंबर आंसर मिल गया, तो ये रेडिकल साइन जो हमारा है ये हमारा सर्ड नहीं है, वो केवल एक रेडिकल साइन है।
एग्जैक्टली, अनदर एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल थर्ड लेता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2, इज इट ए सर्ड और नॉट सर्ड?
हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2, तो अंदर में हमारा जो नंबर लिखा था जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं वो हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। 2 + √2 रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि रेडिकल साइन के अंदर जो हमारा रेडिकेंड लिखा होता है, रेडिकेंड एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट एक्स है तो ये जो एक्स हमारा अंदर लिखा है ये रेडिकेंड है,
और एन तो, जो है वो ऑर्डर बोलते हैं।
हाँ, एन जो है वो हमारा रेडिकल का ऑर्डर कहलाता है। तो अभी जो आपने मुझे एग्जाम्पल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2, तो x की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 + √2, जो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारा सर्ड नहीं है।
और मैं क्लारीफाई स्टूडेंट को करना चाहता हूँ कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये जो कॉन्सेप्ट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट फिर भी याद करा देता हूँ। रैशनल नंबर का जो फॉर्म है p/q है, q ≠ 0 है।
हाँ,
अगर इरेशनल नंबर है जो जिसका वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देन वी कैन से इट इज द इरेशनल नंबर है। दुनिया में जो भी नंबर है आइदर इट इज रैशनल होगा और इरेशनल होगा। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समथिंग डिफरेंट। और रियल वर्ल्ड में दो टाइप ऑफ नंबर मिलेगा, दैट नंबर इज आइदर इरेशनल और इरेशनल, और दोनों को मिला देंगे तो रियल नंबर आएगा। कि वेरी क्लैरिटी ग्रास रूट में भी हम लोग क्लैरिफाई होना चाहिए, क्योंकि बार बार रैशनल इरेशनल क्यों बोले, उसका मतलब क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक जो कॉन्सेप्ट है, दो सॉर्ड का बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, किसी को हम प्योर सॉर्ड बोलते हैं, किसी को एक मिक्स्ड सॉर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5√16 अगेन आई एम रिपीटिंग दैट फोर्थ होगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। 5√16 इज ए सॉर्ड और नॉट सॉर्ड? इफ इट इज सॉर्ड देन व्हिच काइंड ऑफ सॉर्ड इट इज?
5√16
एग्जैक्टली।
हाँ, तो 5√16 इसकी हम रैशनल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हमारा एक सर्ड है। अब इस सर्ड में हमारा कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा प्योर सर्ड
होगा। मतलब सर्ड आर टू टाइप्स, वन इज प्योर सर्ड, अनदर इज मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड सर्ड मीन्स सर्ड के साथ और कुछ जुड़ा है।
हाँ, जैसे मैं बोलूँ 5 × √2, तो स्क्वायर रूट टू हमारा सर्ड हो गया, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया एक कोएफिशिएंट 5 से, तो ये हमारा मिक्स्ड सर्ड हो गया।
एग्जैक्टली, सिमिलरली 2√3 इज ए मिक्स्ड सर्ड होगा।
हाँ,
एग्जैक्टली। नेक्स्ट एक कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेके बहुत प्रॉब्लम ही अराइज होता है। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट को बताता हूँ, बहुत कुछ क्वेश्चन एग्जाम पे जो आता है बेसिकली दो मार्क और एक मार्क का क्वेश्चन, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका कोई भी सॉल्यूशन विद इन 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा. दैट्स व्हाई ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन आइदर एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर. हो सकता है कि शॉर्ट आंसर को आ सकते हैं, 4 मार्क मैक्सिमम आ सकते हैं. फिलहाल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन भी नहीं है. एंड अनदर काइंड ऑफ प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं, फाइंड द इंडेक्स एंड रेडिकेंट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 117. व्हिच इज द इंडेक्स, व्हिच इज द रेडिकेंट.
फिफ्थ रूट ऑफ 117. तो इसको देखो हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 117 रेस्ट टू द पावर 1/5. तो ये जो स्क्वायर फिफ्थ रूट है, तो ये जो 5 है वो हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ रेडिकल. तो 5 जो है उसे हम इंडेक्स ऑफ सर्ड भी कहते हैं, और जो अंदर हमने लिखा था 117 वो हमारा हो गया रेडिकल.
बिकॉज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मेनली आस्क इन द एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई सेम क्वेश्चन आई आस्क दैट सिमिलर के वन एग्जांपल आई एम टेकिंग दैट स्क्वायर रूट ऑफ 162, व्हाट इज द इंडेक्स एंड व्हाट इज द रेडिकेंट.
स्क्वायर रूट ऑफ 162. तो ये जो 162 है अंदर, ये हमारा रेडिकेंट हो गया, और स्क्वायर रूट है तो ये जो 2 हमारा हो गया, दैट 2 इज इंडेक्स ऑफ द रेडिकल.
अगर कुछ नहीं है, सिंबल है, उसको मान के चले ये 2 है वैल्यू.
हाँ,
है
अगर कोई कुछ लिखा नहीं है तो वो हमारा स्क्वायर रूट है ना.
इट इज अंडरस्टूड. अगर नहीं लिखा है तो 2 मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है. इट इज अंडरस्टूड. आप बोलना नहीं क्यों नहीं लिखा. नेक्स्ट कंसेप्ट हम जो रेडिकल्स को बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉज ऑफ रेडिकल्स, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज, बिकॉज फर्स्ट रूल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट. राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रेडिकल्स.
हाँ, तो लॉज ऑफ रेडिकल्स में भी जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि a रेस टू द पावर 1/n, ये क्या है हमारा nth रूट ऑफ a. अब अगर इस पे हम पावर लगा दें n, मैंने क्या बताया nth रूट ऑफ a, इस पे अगर मैं पावर लगा दूं n, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, द आंसर विल बी a, क्योंकि a रेस टू द पावर 1/n इज nth रूट ऑफ a. इस पर पावर n का मतलब है मैंने इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर मुझे क्या मिल जाएगा a. तो फर्स्ट जो मेरा लॉ है रेडिकल का वो यही है, nth रूट ऑफ a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a.
दिस इज द फर्स्ट रूल और लॉज. एंड सेकेंड वन इज,
और सेकेंड वन में हम करेंगे nth root of a multiplied by nth root of b. अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, दोनों a और b का मैंने nth root निकाला है, यानी कि दोनों radicals के index सेम है, तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आता है आंसर nth root of a into b. तो अगर हमारे सेम इंडेक्स के रेडिकल्स हैं तो उनके मल्टीप्लाई करने पर उनके रेडिकेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. फिर से मैं रूल पढ़ती हूँ, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b.
एग्जैक्टली थर्ड रूल जो है वो बेस्ड ऑन डिवीजन. जैसे सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, थर्ड वन इज nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b. वेरी सिंपल. देन वी कैन से nth रूट ऑफ a अपॉन b. जहाँ पर आप इंडेक्स सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ मल्टीप्लाई करा दी. जहाँ डिवीजन है वहाँ हम डिवीजन कर सकते हैं.
और ये एप्लीकेबल केवल तभी होगा जब हमारे इंडेक्स सेम है.
एग्जैक्टली. और एनी लॉज दैट आर बेस्ड ऑन सॉर्ट्स, इज देयर एनी लॉज दैट आर बेस्ड ऑन सॉर्ट्स.
हाँ, जैसे हमने अभी रेडिकल्स के लॉस बताए, उसी तरह से हमारे लॉस सर्ड्स में भी हैं. अब सर्ड्स में हम क्या करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हम उसको फ्रैक्शनल पावर में लिखते हैं. जैसे अभी हमने रेडिकल्स में बताया हम रेडिकल साइन यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से सर्ड्स में हम पावर यूज़ कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पावर. जैसे x रेस टू द पावर 1/n, ये क्या है हमारा nth रूट ऑफ x. y रेस टू द पावर 1/n, मतलब nth root of y. अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया, x raised to the power 1 upon n multiplied by y raised to the power 1 upon n is equal to x into y raised to the power 1 upon n.
सिमिलरली कैसे डिवीजन पे सिमिलरली होगा, बात है कि आप मान के चलिए कि जहाँ पर मल्टीप्लाई है प्रोडक्ट में ऐड हो जाता है, इन केस ऑफ एक्सपोनेंट रेडिकल में जहाँ डिवीजन होता है वहाँ सब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, और बाकी इंडेक्स सेम है, अगर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है तो आउटकम्स भी मल्टीप्लीकेशन पे आएगा, और डिविजन पे है तो वो भी आउटकम्स डिविजन फॉर्म में आएगा.
बिल्कुल, x by y raised to the power 1 upon n. यहाँ भी हमें ये देखना है कि हमारा जो फ्रैक्शनल पावर है वो हमारा 1 upon n दोनों जगह है.
दोनों जगह होना चाहिए. और एक कंसेप्ट है जिसको हम यूज करते हैं इन जनरल, इट इज अंडरस्टूड, फिर भी हम रिपीट कर लेते हो, x to power 1 by n to the power 1 by m. देन वी सेम केस में x to power 1 by n to the power 1 by m, that is x to power 1 by mn.
M into n.
That means we multiply, दोनों को multiply कर
दोनों की powers multiply कर लेंगे.
Exactly similar एक दो rule है जिसको आप किताब में पढ़ के समझ सकते हो, कोई problem नहीं है. अभी हम discussion करेंगे कि एक concept use होता है कि similar और like sort. What is the similar type of or like sorts?
जैसे मान लीजिए सर्ड हमारा रूट फाइव है. अब रूट फाइव मैं अभी हमने डिस्कस किया था प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड. रूट फाइव, फिर मैं लिखूं थ्री रूट फाइव और फिर मैं लिखूं फोर रूट फाइव, तो यहाँ पे हमारी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, रूट फाइव हमारे तीनों टर्म्स में आया, मतलब हमारा सेम सर्ड यूज़ हो रहा है. सेम सर्ड रूट फाइव हमारे तीनों टर्म्स में आ रहा है,
मतलब तो आप बता रहे रेडिकेंट अगर सेम रहे.
हाँ,
अगर सिंपली लैंग्वेज में बताएंगे अगर रेडिकेंट सेम है
देन और इंडेक्स भी सेम है,
इंडेक्स भी सेम है, देन वी कैन से दिस इज द
सिमिलर सर्ड.
फॉर एग्जाम्पल थ्री रूट फाइव एंड सेवन रूट फाइव.
हाँ, रेडिकेंट भी सेम है, इंडेक्स भी सेम है, लेकिन इनके कोएफिशिएंट्स अलग अलग है. पहले में आपने थ्री लिया और दूसरे में आपने सेवन, तो ये जो हमारे सर्ड्स कहलाते हैं ये हमारे सिमिलर सर्ड्स कहलाते हैं.
तो यहाँ पे एक स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ क्यों जरूरी है कि सिमिलर और लाइक सर्ड पता करने में, क्योंकि हम एडिशन और सब्स्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन जो भी केस है सिमिलर सर्ड का बीच में एडिशन हो सकता है. अगर डिसिमिलर है वहाँ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि व्हिच सॉर्ट्स आर सिमिलर टू ईच अदर.
हाँ, क्योंकि अगर वो सिमिलर नहीं है तो हम एडिशन नहीं. या एक एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 75 और स्क्वायर रूट 12, आपको क्या लगता है ये सिमिलर सर्ड है?
व्हिच वन?
स्क्वायर रूट 75 एंड स्क्वायर रूट 12. अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि सिमिलर नहीं है,
लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा 75 को. पहले कन्वर्ट करेंगे देन वी कंपेयर करना है.
हाँ, मतलब स्मॉलेस्ट रेडिकेंट ले आएंगे और तब हम देखेंगे कि दोनों ही हमारे सिमिलर सर्ड हो जाते हैं.
एग्जैक्टली, जहाँ पर आप जो बताए कि 75 है रूट ऑर्डर ऑफ 75, उनको हम लोएस्ट फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, देन कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 by 4 इज नॉट राइट आंसर, सो विल राइट 2.
हाँ, उसी तो तरीके से,
इसी तरीका था लोएस्ट फॉर्म में ऑलवेज इन केस ऑफ ए रेशनल नंबर और इन केस ऑफ ए आपका रेशनल नंबर व्हाट एवर इट मे बी इट शुड बी रिटेन इन द लोएस्ट फॉर्म. नेक्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ड्स. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज
सर्ड्स?
बिकॉज द फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज इज सिमिलर सर्ड कैन बी सब्स्ट्रैक्टेड एंड एडेड. This is the one property. Because when we know the sorts, we must be used. Where to be used it?
केवल सिमिलर सर्ड्स ही हम एड और सब्ट्रैक्ट कर
सकते हैं, क्योंकि डिसिमिलर है तो हम नहीं कर पाएंगे. दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर वन. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज,
हाँ, वो मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के लिए है. हम दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड केवल तभी कर सकते हैं जब उनके इंडेक्स सेम हो, यानी कि ओनली दो सर्ड्स कैन बी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड दोज हु आर ऑफ सेम ऑर्डर. जिनके ऑर्डर सेम है, जिनके इंडेक्स सेम है, केवल वही सर्ड्स हमारे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल
स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स सेम है, दोनों का दो टू टू है तो ये हमारे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे. लेकिन अगर मैं एक ले लूँ क्यूब रूट ऑफ फाइव और दूसरा मैं ले लूँ फिफ्थ रूट ऑफ सेवन तो ये हमारे इंडेक्स अलग अलग हो गए, ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं
कर सकते हैं. तो देट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्ट. सिमिलर सॉर्ट में एड एंड सब्सट्रैक्ट हो सकता है. और पावर जिसको इंडेक्स सेम है वहाँ पे हम कंसेप्ट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का आ सकता है. नेक्स्ट विल बी डिस्कस अबाउट कंपेरिजन टू सॉर्ट्स.
जब हमें सॉर्ट्स को कंपेयर करना है तो हमारा कंपेयर करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. कभी कभी हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर के सॉर्ट्स आ सकते हैं, आ जाते हैं, तो हम उनके ऑर्डर्स को सेम कर लेंगे. कैसे? इंडेक्स को भी हम सेम पावर पे रेस कर देंगे, रेडिकेंट को भी हम सेम पावर पे रेस करके जितने हमें टर्म्स दिए हैं सबके इंडेक्स को समान कर देंगे और उसके बाद हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे.
तो ये मतलब है कंपेरिजन करने के लिए पहले इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा. अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कंपेयर करने का पर्पज यही है कि व्हिच वन इज ग्रेटर, व्हिच वन इज लोअर.
स्मॉलर,
तो स्मॉलर ग्रेटर पता तब होगा जहां पर हम कंपेयर करेंगे
इंडेक्स से.
एग्जैक्टली. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच वन इज द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द सॉर्ट, दैट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ए सॉर्ट. What mean by rationalizing factor of a SERD?
Rationalizing factor of a SERD का मतलब है अगर हम किसी SERD को दूसरे SERD से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पे हमें रैशनल नंबर मिल जाए तो ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये आपस में एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूट थ्री. रूट थ्री को अगर मैं रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे आंसर में थ्री मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएगा. तो रूट थ्री का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया? रूट थ्री. एक दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से लेते हैं, जैसे रूट थ्री माइनस रूट टू. अब अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं रूट थ्री प्लस रूट टू से तो मुझे आंसर में एक रैशनल नंबर मिल जाता है, थ्री माइनस टू वन. तो रूट थ्री माइनस रूट टू एंड रूट थ्री प्लस रूट टू दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाते हैं.
और उसको सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी हो जाएगा क्योंकि जब हम कन्वर्ट करेंगे रैशनलाइजिंग को देन प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी से हो जाएगा. एंड अभी हम एक प्रॉब्लम जिसको हम रूट ऑफ एट व्हाट इज द इजीट ए सॉर्ट और नॉट सॉर्ट. इफ इट इज ए सॉर्ट देन व्हिच काइंड ऑफ सॉर्ट इट इज.
रूट एट को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2. अब हमने स्क्वायर रूट किया तो इसे हमें पहले सिंपल फॉर्म में रखना पड़ेगा. तो ये हो गया 2² × 2. ये हमारा रेडिकेंड है. स्क्वायर रूट में हम 2² में से 2 को बाहर लिख लेंगे तो √8 विल बी इक्वल टू 2 × √2. अब √2 के साथ में एक मल्टीपल भी हमारा 2 आ गया. ये हमारा सर्ड तो है लेकिन ये हमारा मिक्स्ड सर्ड है.
एग्जैक्टली. क्योंकि बहुत टाइम स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि वेरी सिंपल लगता है रूट और पर एट, सो इट इज द प्योर सर. एग्जैक्टली. नॉट ए प्योर सर. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एट लास्ट आई वुड लाइक टेल टू माय स्टूडेंट दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सर. वही होगा जहाँ पर सिमिलर सर है वहाँ हम एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हुए. इंडेक्स सेम होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. आई थिंक लर्नर यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली एक्सपोनेंट एंड रेडिकल व्हाट वी डिस्कस टूडे.